ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी में प्रश्न नंबर 5, बाइबल में दिखाते अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? प्रश्न नंबर 5, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? प्रश्न 24 फरवरी 1984 की मुरली से लिया गया है और उस मुरली का जो हेडिंग है वो है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। उत्तर दिया है बाबा ने, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो, उसी क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं। यह एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्होंने गृहस्थी बनने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हो गए। तो ये बाबा ने अनोखा उत्तर दिया है एंटी क्राइस्ट का। न्यू टेस्टामेंट में नया करार जो है बाइबल का, जिसमें ईसा मसीह के जीवन का वर्णन है, 5 बार एंटी क्राइस्ट शब्द आता है। जॉन के जो पत्र है 3, उसमें पत्र 1 और पत्र 2 में इसका वर्णन आता है। इसी तरह का एक फिगर कुरान में भी वर्णन है, कुरान में नहीं परंतु हदीस में वर्णन है, जिसमें एक जैसा एंटी क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में है, उन्होंने कहा है कि ऐसा ही एक अल मसीह अद जद्दल आएगा कि जो सबको धोखा देगा। तो अलग अलग जगह जो वर्णन है, 5 जगह एंटी क्राइस्ट का बाइबल में, उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग जगह कही हुई है। कहीं पर कहा हुआ है, चिल्ड्रन इट इज द लास्ट आवर एंड एज यू हैव हर्ड दैट एंटी क्राइस्ट इज कमिंग सो नाउ मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम देयरफॉर वी नो दैट इट इज द लास्ट आवर वी वेंट आउट फ्रॉम अस दे वेंट आउट फ्रॉम अस बट दे वर नॉट ऑफ अस मेनी डिसीवर्स हैव गॉन आउट इन टू द वर्ल्ड Those who do not confess that Jesus Christ has come in the flesh and such person is a deceiver and the Antichrist. Teesri jagah, who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. Ye teesri jagah varnan hai. Aur ek jagah varnan hai. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God, and that every spirit that does not confess Jesus is not from God. And this is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. इस तरह से Antichrist का वर्णन है। तो बाबा कह रहे हैं, और उनका कहना है कि Antichrist अर्थात फॉल्स प्रोफेट्स, झूठे मसीह आएंगे, झूठे पैगंबर आएंगे। जैसे अभी जीसस क्राइस्ट आया हुआ है और बाइबल में ही वर्णन है कि उसके रहते भी उस समय भी झूठे मसीह है जो ये दावा करते हैं कि हम पैगंबर है, परंतु वो है नहीं, वो झूठे हैं। तो उनको कहा गया है फॉल्स प्रोफेट्स। यहां तक कि जब जीसस क्राइस्ट था, उसका ही अपना एक शिष्य यहूदा जुडास, 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस क्राइस्ट को बेच दिया और पकड़वा दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट क्या है। क्रिश्चियन धर्म कहता है एंटी क्राइस्ट अर्थात जो जीसस क्राइस्ट के नाम पर अपने आप को मसीहा कहेंगे उन सभी को एंटी क्राइस्ट कहा हुआ है। और ऐसा वर्णन है कि अंत समय में बहुत सारे एंटी क्राइस्ट आएंगे जो कि तुम्हें धोखा देंगे, बरगलाएंगे और ये कहेंगे कि हम मसीह है और वो जीसस मसीह नहीं है। ऐसे जो कहने वाले हैं क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध वो सारे एंटी क्राइस्ट है। उसी तरह का वर्ण इस्लाम धर्म में भी है, जबकि मोहम्मद पैगंबर ने यह खुद कह दिया है कि मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद और कोई नहीं आएगा। परंतु देखा गया है कि उस धर्म में भी बाद में बहुत सारे आए और जिन्होंने कहा कि हम भी पैगंबर है, हम सब भी। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन है, इसलिए शिया सुन्नी पर वो नहीं रुका, उसके बाद में कितने सारे आते गए, अहमदिया और बहुत सारे, वहाबिज्म, कितने कितने आगे बढ़ता गया वो। तो वो एक उसी तरह वास्तव में एंटी क्राइस्ट ये शब्द केवल क्राइस्ट से संबंधित नहीं, एंटी क्राइस्ट अर्थात ट्रेटर, एंटी क्राइस्ट अर्थात धोखा देने वाले, एंटी क्राइस्ट अर्थात वो सारे जो धोखा देंगे, फंसाएंगे, डिसीवर्स, विरोध करेंगे, वो सारे। बुद्ध धर्म को देखा जाए तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध जब आए तो वो विद्रोह था हिंदू धर्म के विरुद्ध, क्योंकि हिंदू धर्म में जातिवाद था, जो शूद्र जाति के थे उन पर अत्याचार होते थे, उनको आह्वान पहले चिल्ला कर कहना पड़ता था किसी गांव में जाने से पहले कि मैं आ रहा हूं, दूर हट जाओ, मुझे छूना नहीं, उसको छूना भी पाप, उसकी परछाई भी नहीं लगनी चाहिए, वो एक झाड़ू अपने पीछे बांध देते थे ताकि जहां से वो जाए वो झाड़ते जाए। ऐसे नियम थे ब्राह्मणों के, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा अत्याचार होते थे शूद्रों पर। महात्मा बुद्ध का आना जो हुआ वो इन्हीं ब्राह्मणों के विरुद्ध था, परंतु जो महात्मा बुद्ध के शिष्य बने वो सारे ब्राह्मण थे पहले। इसलिए कुछ कुछ बातें ये कहना मुश्किल है कि वो महात्मा बुद्ध के वाक्य है या उन ब्राह्मणों के वाक्य है, क्योंकि वो पहले सारे ब्राह्मण थे फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य बने, परंतु ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा अभी तक थी हिंदू धर्म के प्रति, इसके लिए उन्होंने अपने रीति से महात्मा बुद्ध का कहा हुआ इंटरप्रेट किया, समझा और बताया लोगों को। इसलिए जो अवेलेबल लिटरेचर है बुद्ध का धम्मपद में, जरूरी नहीं हो कि सब कुछ महात्मा बुद्ध का है, उसमें बहुत सारा मिलावट है, बहुत सारी मिलावट जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन, अपने अपने मत डाल दिए। उसी तरह वर्धमान महावीर और उसके नौ शिष्य मुख्य, उसने जो कहा, वो नौ शिष्य कौन थे, वो भी वो सारे ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी मिक्स कर दिया। तो हर धर्म में विरोधी आत्माएं हुई है, धर्म और उसके ही खिलाफ जाने वाली आत्माएं हुई है, जिन्होंने अपने आप को ही प्रोफेट कहा या तीर्थंकर कहा या कहा कि उसकी आत्मा अब मुझ में है। तो ये तो एक भाग हो गया एंटी क्राइस्ट का, कि जिसमें उसी धर्म में उसी धर्म के विरोध करने वाली आत्माओं का जन्म होना और उसी का विरोध करना, एक तो ये। दूसरा, बाबा कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट कौन है, ये बाबा की परिभाषा एंटी क्राइस्ट की। बाबा कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट अर्थात आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे। तो ये अगर एक धर्म है, कोई भी एक धर्म ले लो, चाहे क्रिश्चियन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे पारसी धर्म या और भी कोई धर्म, उसी धर्म के लोग उस धर्म की वैल्यू को कम समझ रहे हैं और दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे, कन्वर्ट हो रहे, धर्म परिवर्तन कर रहे। एक तो ये, उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते, वो समझते हमारा धर्म कमजोर है, इनका धर्म ज्यादा शक्तिशाली है, इनका भगवान जल्दी सुनता है, हमारा तो सुनता ही नहीं, इसलिए उनके धर्म में जाओ। क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत में आए तो फटाफट बहुत सारे भारतीय क्रिश्चियन बन गए। ये एक कारण था धर्म परिवर्तन का। कन्वर्ट कुछ को लोगों को फोर्स नहीं करा है, फोर्स से कन्वर्ट, एक पोप इधर आ जाना अर्थात कितने ही कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते थे और जो गरीब थे वो तुरंत मान जाते थे। एक तो ये, तो यह एंटी क्राइस्ट हो गया। तीसरा, जैसे आजकल में कई पादरी ब्रह्मचर्य के महत्व को कम समझते हैं और उनको गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देना शुरू कर दिए, यह भी उसी धर्म में जैसे एंटी क्राइस्ट हो गए। जीसस क्राइस्ट स्वयं ब्रह्मचारी था, सन्यासी था, तपस्वी था। वो उसका जीवन तपस्या से भरा है, उसके जीवन में कोई सुख सुविधाएं नहीं है। बर्ड्स हैव नेस्ट, फॉक्सेस हैव होल्स, बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। वो कहता है पक्षियों को घर है, ये बाकी सभी जीव जंतुओं के पास रहने का स्थान है, पर मेरे पास तो रहने का भी स्थान नहीं है। अभी उसके नाम पर बड़े बड़े चर्च खड़े कर दिए, पर वो जब था उन्हीं लोगों ने जिसकी उन्होंने उसने मदद की थी, उन्हीं लोगों ने जिसकी बीमारियां उसने ठीक कर दी, वही सारे ज्यूज, उन्हीं ने सबके मिलकर उसको फांसी पर, सूली पर टंगा दिया, वही सारे लोग जहां उसने चमत्कार दिखाए थे, उन्हीं सबने मिलकर पकड़कर उसको, वो तो सूली पर नहीं लगाना चाहता था, उसने ऑप्शन भी दिया था पिलेट ने कि ये एक चोर है और ये है, किसको सूली पर लगाना चाहते हो, मैं एक को छोड़ सकता हूं। सबने कहा कि चोर को छोड़ दो, इसको लगाओ सूली, चढ़ाओ सूली पर। तो और दूसरा, हर धर्म की गिरावट जो हुई है वो इसी कारण से हुई है, ब्रह्मचर्य का पतन। लेटेस्ट उदाहरण सबके सामने है बिशप का, अभी अभी का। तो ये हो गया एंटी क्राइस्ट। तो तीन चीजें बताई एंटी क्राइस्ट के बारे में, वो जो अपने ही धर्म की वैल्यू को कम समझते हैं, दूसरे वो जो दूसरों को ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, और फिर तीसरे एंटी क्राइस्ट वो है जो उसी धर्म में है परंतु ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ दिया है। तो ये है एंटी क्राइस्ट। अब महत्वपूर्ण चर्चा ये नहीं है एंटी क्राइस्ट की, महत्वपूर्ण चर्चा आगे है, उसके आगे से भी कुछ और महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में भी ऐसे ढेर सारे ट्रेटर्स हुए हैं, धोखेबाज हुए हैं, दगाबाज हुए हैं, विदेश द्रोही हुए हैं, आत्मविश्वासघाती हुए हैं, जिन्होंने भारत को बेड़ियों में जकड़ा, जिसकी वजह से, और सबसे पहले उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे पहले, उसके बाद में प्रॉपर चर्चा है एंटी क्राइस्ट अभी क्या करना है उसका। सबसे पहला आंबी कुमार, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो आंबी था वो जिसने सिकंदर के साथ संधि की थी और सिकंदर को भारत में प्रवेश दिया था। सबसे पहला गद्दार इस देश का, पोरस जो कि सिकंदर से लड़ना चाहता था, पोरस के विरुद्ध गया और आंबी कुमार ने सिकंदर से दोस्ती की। वो दूसरी बात है कि चाणक्य बीच में आया और सिकंदर आगे बढ़ नहीं पाया और सिकंदर को वापस जाना पड़ा और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने आंबी कुमार को मार गिराया। पर आंबी कुमार था कि जिसने सबसे पहले सिकंदर से दोस्ती की। ये भारत का सबसे पहला, अगर कहे गद्दार, धोखेबाज, एंटीक्राइस्ट, सबसे पहला। दूसरा मीर जाफर 1757 आजादी की बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव के पास बहुत कम सिपाही थे, बहुत कम। सिराजुद्दौला बहुत शक्तिशाली था, पर लॉर्ड क्लाइव ने एक ऐसी युक्ति चली कि ढूंढा कि इस सेना में, कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जस्ट आई हुई है, जहांगीर से मिले हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि भारत में हम कंपनी चालू करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, अच्छा ही है, भारत तो सभी देशों को, आगंतुकों का सम्मान करता है, अतिथि देवो भव। तो उसने तो कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो गई थी, एक लड़ाई हुई थी रॉड क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के विरुद्ध, ये दोनों की लड़ाई हुई, उसमें लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को खरीद लिया और उसको प्रलोभन दिया, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो पूरा बंगाल तुम्हारा होगा, बंगाल के नवाब तुम बन जाओगे। और उसने जैसा लड़ाई हुई, लड़ाई के मैदान में दो सेनाएं आई, शस्त्र डाल दिए और सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर जीत गया, लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई। लॉर्ड क्लाइव ने तो खत लिखा था उधर इंग्लैंड में कि हमको सेना चाहिए, पर इंग्लैंड ने कहा नहीं, हम तो बिजी है उधर, उत्पात मचा रहा है नेपोलियन, उससे लड़ने में बिजी है उधर फ्रांस में, हम नहीं भेज सकते, जितनी सिपाही है उससे ही लड़ो। मीर जाफर गद्दारे वतन, इनका 400 से भी कम थे उनके, तो 300 ही कहते हैं कोई कोई तो किताबों में, 400 लॉर्ड क्लाइव के, और इनके तो कितने सारे थे, पर फिर भी हार हुई। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और बाद में इस मीर जाफर को भी उन्होंने मार दिया, वो दूसरी बात है, गद्दार के साथ गद्दारी, डिवाइड एंड रूल, ये दूसरा। तो इसके बाद ये दूसरा नहीं, ये तीसरा रखो इसको, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो गई और ब्रिटिश राज भारत में हो गया। उसके भी पहले एक दूसरा है, जयचंद, राजा जयचंद, कन्नौज का राजा, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता, वो उसकी बेटी को लेके भाग जाता है, जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ दोस्ती कर ली और पृथ्वीराज चौहान की बैटल ऑफ टरेन 1192 में हार हुई, और पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग का, नए युग की शुरुआत हो गई वहां से, शायद यहां पर ही द्वापर खत्म हुआ और कलयुग स्टार्ट हुआ, ये जो पॉइंट है 1192 का, और यहां से इस्लाम भारत में आ गया, मुगल ये सारे जो सारे भारत में आ गए, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने तो राज्य नहीं किया, वो गुलाम वंश को छोड़ के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, जिसमें कुतुब मीनार बना, फिर उसके बाद में एक एक करके रजिया सुल्तान, और उसके बाद में फिर लोधी, और उसके बाद में खिलजी, और उसके बाद में बाबर, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, झांझा, और वो सारा चालू हुआ औरंगजेब और सारे। तो ये जो इस्लाम भारत में आया उसका मुख्य एक कारण है कन्नौज का ये राजा जयचंद, क्योंकि जयचंद ने दोस्ती कर ली सीधा मोहम्मद गोरी के साथ, इसको भी गद्दारे वतन कहा जाता है। तीसरा बताया सिराज दिस मीर जाफर, उसके बाद में और भी है बहुत सारे, उसमें तात्या तोपे को जिसने पकड़वाया, बोझा मानसिंह, वो वाला मानसिंह नहीं, अकबर में भी, अकबर के समय में भी एक मानसिंह था, उसको भी गद्दार कहा जाता है क्योंकि राजपूतों के साथ उसने गद्दारी की, वो दूसरा है, परंतु अकबर तो उसे बहुत मानता था, नवरत्नों में एक है मानसिंह, राजा मानसिंह, पर अगर देखा जाए तो भारत के साथ तो गद्दारी है। हम जिस मानसिंह की बात करिए वो नरवार का मानसिंह, तात्या तोपे को बुलाया उसने और उसको कहा कि मुझे संधि करनी है, क्या करना है मुझे बताओ ब्रिटिश का। तो मीटिंग हुई, उसके बाद में तात्या तोपे सोने गए और वहां पर ही ब्रिटिश को उसने बुला दिया और पकड़वा दिया और तात्या तोपे को फांसी हो गई। वही तात्या तोपे जिसने 1857 की क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाई है, झांसी की रानी का अंतिम अंत्येष्टि तात्या तोपे ने की है, झांसी की रानी को अंतिम संस्कार, क्योंकि कोई था नहीं करने वाला, तात्या तोपे ने किया था, उसको पकड़वाने वाला मानसिंह वो गद्दारे वतन। उसके बाद में टीपू सुल्तान को पकड़वाने वाला उसका ही एक साथी मीर सादिक, जिसने द्वार खोल दिए और टीपू सुल्तान को पकड़वा दिया। एंग्लो मैसूर वॉर 4, सिरंगापट्टनम, वहां पर टीपू सुल्तान को जिसने पकड़वाया वो मीर सादिक था। हाँ, वो दूसरी बात है कि बाद में फिर टीपू सुल्तान के साथियों ने, सैनिकों ने उसको भी मार दिया, पर पकड़वाने का जो काम, जो दरवाजा खोल दिया ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए, वो मीर सादिक था कि जिसने दरवाजा खोल दिया और टीपू सुल्तान पकड़वा गया और डेथ। तो ये जो हुआ एंग्लो मैसूर वॉर 4, उसमें टीपू सुल्तान की हार इसके द्वारा। उसके बाद में और एक था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ गवाही देने वाला जय गोपाल, खिलाफ गवाही दी, उसके बाद में तीनों को फांसी हो गई। जिसने मुंह खोल दिया वो, बाकी कोई भी, सब लोग इधर से थे पर उसने खिलाफ में गवाही दे दी, वो भी एक नाम है जय गोपाल। इस तरह के फिर बहुत सारे, महात्मा गांधी ने एक नाम लिया है कि ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा जो मदद की है वो जमींदारों ने की है, भारत के नाम नहीं है कोई, पर अधिकतर जमींदारों की मदद के कारण ही 1857 की क्रांति असफल हुई, क्योंकि सारे जमींदार उनके साथ मिल गए थे, तो वो भी गद्दार है एक रीति से। तो इस तरह से ये सारी कुछ लिस्ट है जिसमें भारत पहले सिकंदर के आक्रमण के इसमें आया, फिर बाद में इस्लाम, और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे एक एक करके करते करते सारे ये गद्दार है। तो ये सारे एक रीति से कौन हुए? ट्रेटर्स, देशद्रोही, गद्दार। ड्रामा में ये भी नून था, ड्रामा में हिसाब किताब था, ड्रामा एक्यूरेट है, ये सब होना ही था, ये सब चीजें हैं, पर हम बता रहे क्योंकि एंटी क्राइस्ट की बात चल रही है। एंटी क्राइस्ट अर्थात धोखा देने वाले। अभी हम बिना किए इस ड्रामा में हर सीन का अपना एक महत्व है। हमारे अपने जीवन में आज तक जितनी सीन्स हुई है, जो कि घटनाएं हुई है, बिना कारण कुछ भी नहीं हुआ है। अकारण यहां पर कुछ भी नहीं होता है। जब हर क्रिया की प्रतिक्रिया है वो तो है ही, परंतु क्या इस ड्रामा का कोई सीन झूठा है? इस ड्रामा का प्रत्येक सीन सत्य है। इस ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है सत्य ही हुआ है। जो भी हुआ, वो धोखा देना भी उसमें नून था, माना। वो इस्लाम भारत में आए वो भी नून था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी, हुन, पोर्तुगल, सब ने आकर भारत को गुलाम बनाया। ऐसा कोई भी नहीं है भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया आज तक। भारत ने सबको आश्रय दिया। वो पारसियों को कोई सहारा देने वाला नहीं था, भारतीयों ने सहारा दिया। वो इजराइलाइट्स को कोई सहारा देने वाला नहीं था, भारत ने सहारा दिया। भारत ने जाकर किसी पर आक्रमण नहीं किया, सबने आकर मिल मिलकर भारत के साथ आक्रमण किया। भारत सूक्ष्म स्टार्टिंग पॉइंट तो कहां है? फिर तो यह भी पूछा जा सकता है कि आत्मा पाप करना क्यों चालू करती है? हिसाब किताब कहां से चालू हुआ? जबकि देवी देवताओं ने कोई पाप किए नहीं, फिर अचानक कहां से चालू हो गया? ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है पाप पुण्य का बाप। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि जहां पर आत्मा में बहुत गहरे में सारे संस्कार होते हैं, द्वापर से निकलना चालू हो जाते हैं। तो चाहे ये जय गोपाल, चाहे ये, कई लोग तो कई और का भी नाम लेते हैं, पर वो बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे नाम और भी है, बहुत सारे नाम है ऐसे कि जिनको ऐसा कहा जाता है, परंतु ये ड्रामा इस तरह बना हुआ है कि जिसमें यह सब आना ही था। अगर ये भी कह सकते, अगर इस्लाम भारत में ना आता तो भारत में उसकी वजह से कुछ फायदे भी हुए हैं बहुत सारे, जो गार्डन और बहुत सारी जो कलाकृतियां, ताजमहल, ये सारा जो बना है, अकारण कुछ भी नहीं है। हम तो एक 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 एंगल से सोच रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, परंतु उसके बहुत सारे एंगल से देखा जाए तो वो भी जरूरी था। वो ब्रिटिशर्स का भारत में आना, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा इधर अच्छा अच्छा भी किया है भारत में। सारे ही खराब नहीं थे, सारे ही विद्रोह, सारे ही एकदम क्रूएल नहीं थे, क्रूर नहीं थे। उसमें से कुछ रहम दिल भी थे, अच्छे भी थे। एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजें उन्होंने यहां पर नई स्थापित की, और कुछ कुछ जो उसमें थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ही सती प्रथा कैसे खत्म हुई? नहीं तो वो चालू ही थी, बहुत सारी अंधश्रद्धाओं में डूबा था भारत, नहीं तो वही चालू होता अभी तक सारा। तो अच्छी भी चीजें हुई उसकी वजह से। एक तो एक नजरिया है जिससे हम देख रहे, टेक्नोलॉजी भारत में आई। भारत तो अपना लगा हुआ था हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, वही चालू था। वो आके उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की, तो ये सारा नूंद था। तो ये हो गया एंटी क्राइस्ट। अभी हम देखेंगे इस यज्ञ में एंटी क्राइस्ट क्या है। मुख्य टॉपिक ये, अब तक था इतिहास, अब तक था धर्म, धर्म की चर्चा हो गई, इतिहास की चर्चा हो गई, अब है एंटी क्राइस्ट इस यज्ञ में। सबसे तीन, इस तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, और मुख्य है तीसरी कैटेगरी जिसमें 10 भाग है। पहले तो वो जो भाग के चले गए, छोड़ के चले गए, भगंती हो गए, भगंती क्राइस्ट जो कि आए और चले गए। बेगरी पार्ट में हिला यज्ञ, यहां आया, सारा पैसा खत्म हो गया था। एक दो साल, एक डेढ़ साल जो चला वो बहुत ही अभाव का था, और जिसमें कितने हिल गए और यहां से चले गए, वो सबसे पहली परीक्षा थी, वो जो छोड़ के चले गए। दूसरे जो छोड़ के गए और बाहर बैठ के ग्लानी कर रहे, छोड़ के तो गई वो तो भाग है ही, परंतु बाहर जाने के बाद विरोध किया, ग्लानी की, निंदा की। हाँ, वो एंटीक्राइस्ट नहीं है, वो अलग, वो थोड़े माइनर एंटीक्राइस्ट है पर है वो भी एंटीक्राइस्ट, वो फर्स्ट कैटेगरी वाले। हम सेकंड कैटेगरी अर्थात छोड़ के भी गए और साथ साथ निंदा करनी भी चालू रखी बहुत, और चालू है मे भी। अपने अपने ग्रुप्स बनाए, एक्स बीके के ग्रुप, पहले बीके थे और अभी उससे बाहर है। तो ये एक अभी मुख्य चर्चा है ये वाली। थर्ड, जो यहां है अभी, जो यहीं बैठ के एंटीक्राइस्ट है, वो कौन कौन है? तो सबसे पहले गए नहीं है कहीं, बाहर नहीं है, बाहर जाकर निंदा नहीं कर रहे, यहीं बैठ के फर्स्ट बाप की जो निंदा करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है जो बाप की निंदा करते हैं, कराते हैं, यह हो जाती है उनके वजह से, चलन ही ऐसी है कि उनके वजह से बाप की निंदा होती है, वो है एंटीक्राइस्ट। उनकी चलन ही ऐसी है, कुछ ऐसे विकर्म कर लेते हैं, कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि जिसके वजह से बाप की निंदा हो जाती है। लोग पूछते हैं, तुम्हारे बाप ने तुमको यही सिखाया क्या? ऐसी चलन वाले जो है, जो गिरते हैं पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से, जो ऐसे विकर्म करते हैं यहां रहकर, इस बिशप के लिए कहा जाता है फर्स्ट बिशप, जिसको अरेस्ट किया गया आज तक इस तरह के अपराध के लिए, फ्रैंको फर्स्ट बिशप है, फर्स्ट कैथोलिक बिशप हु इज अरेस्टेड, पहली बार उसको अरेस्ट किया गया है, और जिसने हर तरह का षड्यंत्र किया अब तक अपने आप को बचाने के लिए, उस बेचारी नन पर कितने सारे लांछन लगाए, केरला की नर्स, अपने आप को बचाने के लिए नई एक वीडियो सीडी तैयार की और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, देखो मेरे साथ ही बैठी हुए फंक्शन में, मॉर्फ्ड वीडियोस। तो ये सब जैसे उस धर्म में पतन, वैसे इधर भी बाप की निंदा करने वाले, सबसे बड़ी निंदा बाबा की हम तब करते हैं जब ब्रह्मचर्य हमारा खंडित होता है, जब कोई ब्रह्मचर्य से गिरता है। परसों की मुरली में था ना, पीछे पड़ जाते हैं, यहां पर भी ये मत समझो कि यहां आ गए तो विष से निकल गए, विष से निकल गए ये मत समझना, काम का गड्ढा है, गिरते हैं। तो पहला एंटीक्राइस्ट है जो बाप की निंदा करे, दूसरे एंटीक्राइस्ट है जो पूर्वजों की निंदा करे, जो चले गए एडवांस पार्टी में है उनकी भी निंदा करे, अब जो है नहीं परंतु उनकी निंदा कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, अच्छा वो चला गया वहां तक भी ठीक है, पर उन्होंने, उनके वजह से मेरा जीवन बिगड़ गया, नहीं तो आज मैं इंचार्ज होता ये डिपार्टमेंट का उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो निर्णय था ना दादी का या किसी दादी का, ये ठीक नहीं था, उनकी निंदा करना ये एंटीक्राइस्ट है पूर्वजों की। तीसरा, वरिष्ठ भाई बहने या दादियों की निंदा, उनको भी कंपेयर करना एक दूसरों से, उनका कंपैरिजन करना, ना तुम तो तुम्हारी इतनी हैसियत औकात लेवल है कि उनको जज करे, ना ही उनके जीवन की लेश मात्र त्याग तपस्या तुम्हारे जीवन में है और उनको जज करने चले और उनको कंपेयर करने चले कि इसका ज्यादा प्रभाव है इसका कम प्रभाव है, इसको ज्यादा प्यार करते इसको कम प्यार करते, इसको ज्यादा मान है इसको कम मान है, ये एंटीक्राइस्ट है। ये तीन बाप की पूर्वजों की जो छोड़ गए शरीर, और जो वर्तमान में है उनके प्रति भी हद की भावनाएं रखना। मुझे याद है एक बार दो दादियां मिल रहे थे तो कोई एक बीच में से आ गया, कितना मोह रखते हो, चलो छोड़ो, ऐसे करने लगा और चलो लेट हो गया है। मोह शब्द का प्रयोग दादियों के लिए, क्या दो दादियों का आपस में मोह है? मोह विकार की कैटेगरी है, मोह अर्थात विकार।
उसको वर्ड नहीं मिला वो तो
ब्राह्मणों के पास शब्दों का भंडार है, वर्ड नहीं मिला ये नहीं कहा जा सकता,
भाव गलत ले।
तो ये एंटीक्राइस्ट है। उसके बाद में चौथा, ब्राह्मण परिवार की निंदा। इस परिवार की निंदा बाहर जाके करना, दूसरी संस्थाओं में, दूसरे लोगों के सामने, ऑफिस वालों के सामने, ब्राह्मण इस परिवार की, ये परिवार के लोग ऐसे भयंकर है, डेंजरस, ऐसा ऐसा करते। और ये किसके सामने कह रहे हैं? अज्ञानियों के सामने, जिसको इस संस्था के विषय में कुछ भी पता नहीं, उसके सामने कर रहे हैं। अरे उसको क्या पता, घर की बातें घर में, एक बहू भी अपने घर की बातें कहीं बाहर नहीं करती है, कितनी खुर्रात से खुर्रात सास हो उसकी। वो सब नहीं, घर की बातें घर में ही रखी जाती है। इस ब्राह्मण परिवार की निंदा करना, यह परिवार प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, भगवान का रचा हुआ परिवार है। मुरलिया चली है, ब्राह्मण परिवार क्या है उसके ऊपर, उसकी निंदा करना। उसके बाद है ब्राह्मण कल्चर की निंदा। पांचवा, ब्राह्मण कल्चर, ऐसे बात करते मतलब ब्राह्मण यहां के रीति रस्म रिवाज, उसकी निंदा करना। ब्राह्मण कल्चर तो पता ही है ना आपको कैसा है, ऐसे ये एंटी क्राइस्ट है। ये सब एक से खतर, एक से बढ़कर एक कैटेगरीज है, खौफनाक कैटेगरीज है ये सारे। ऐसे बहुत नहीं है, कुछ ही है बहुत, पर है, पर वो एंटी क्राइस्ट की कैटेगरी में है सारे। उसके बाद है ब्राह्मण आत्माओं की निंदा करना। एक बताया परिवार, एक बताया ब्राह्मण कल्चर, और फिर है ब्राह्मण आत्माएं, दूसरों एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरों का नीचे लेखना, बैठकर परचिंतन करना, प्रदर्शन करना, उसके विषय में पता कुछ नहीं है पर ऐसे बताना जैसे मैं सब कुछ जानता हूं, ये परचिंतन बहुत बड़ा पाप है। एक्चुअली किसी आत्मा के विषय में पता कुछ नहीं और उसकी निंदा कर रहे, ब्राह्मण की निंदा, वो भी ब्रह्महत्या, बहुत बड़ा पाप है। कैरेक्टर असैसिनेशन अगर कर रहे, किसी का चरित्र हनन कर रहे, किसी के चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, एक दूसरा ब्राह्मण दूसरों के, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो, चाहे बड़ी बहन छोटी बहन पर, या बड़ा भाई छोटे भाई पर, या कोई भाई यहां का बाहर वालों पर, या किसी सेवाधारी पर, है वो भी ब्राह्मण ये नहीं भूलना कि वो शायद अभी एक हफ्ता ही हुआ है ज्ञान में आया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कब से ज्ञान में है, पर वो है ब्राह्मण, भगवान को जाना है, अब उसको स्टैंप लग चुका है ब्राह्मण। उसकी निंदा, उसकी ग्लानी, उसका अपमान, उसका उसकी इंसल्ट, उसको कम लेखना, जहां भगवान कह रहे हैं कि तुमको रिकॉर्ड रखना है रिस्पेक्ट देने का, चाहे कोई भी हो, तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा की निंदा, ग्लानी, अपमान, अवमानना, धोखा देना, अब्यूज करना, आरोप लगाना किसी पर, झूठे आरोप लगाना, अच्छा जिस पर लगाया जाए उसने क्या करना चाहिए, अब यह दूसरा प्रश्न है। एक ब्राह्मण आत्मा है किसी एक डिपार्टमेंट में 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से, या सेवा केंद्र में या मधुबन, और उसको एक दिन झूठा आरोप लग जाए तो क्या करना चाहिए, लांछन लगा दे और वो लांछन पवित्रता के ऊपर है, अब क्या करें? निमित्त को बता दिया, निमित्त ही लांछन लगाए तो धैर्य। दूसरा, सत्य पर विश्वास, सत्य स्वयं, सत्य स्वयं सिद्धि को प्राप्त है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं ही सिद्ध है, स्वयं सिद्धि को प्राप्त है सत्य, उसमें इतनी सत्य में शक्ति है, पावर है कि उस सेल्फ एविडेंट है, वो स्वयं भू है सत्य, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। और जो जिद सिद्ध करने का प्रयत्न करता है वो और ही लोकापवाद का शिकार होता है। इसके लिए सत्य सत्य है, ये है बस। और उस दिन भी कहा था कि झूठ जो है वो कागज की नाव की तरह है, ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज्यादा दूर ज्यादा देर, दूर देर, सत्य की असत्य की नाव, झूठ की नाव जो है कागज की नाव है, ज्यादा दूर तक ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, डूबना है उसको। और सत्य स्वयं सिद्ध है, तो जब सब कुछ जानते हुए भी पवित्रता के ऊपर लांछन लगते हैं, चाहे छोटी बहन है, चाहे कोई कुमार है सेवा केंद्र का, देखा कि ये बहन उस भाई से थोड़ी ज्यादा बात कर रही है, यह शुद्ध स्नेह है, हम सोचते हमारा तो इतना पवित्र स्नेह है, हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, पर यह भी होगा, सब होगा, सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, सीता को सभी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, आत्मा सीता को भी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये भी जब ऐसा हो तो उस आत्मा का कर्तव्य है धैर्य, सत्य में विश्वास, सत्य के स्वयं सिद्ध होने पर विश्वास, उतावला नहीं हो जाना है, या सिद्ध करने नहीं लग जाना है, या इसके इससे उससे मिलने लग जाना है, शांत, उसको पता है, रग रग को वो जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, परसों की मुरली जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानता है, वैसे पारलौकिक बाप एक एक बच्चे को जानता है। क्या वो मुझे नहीं जानता? जानता है, उसे सब पता है, उसे ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, ये जो घटना घट रही है लांछन लगने की, झूठा आरोप लग रहा है, वो कहता है अरे हम तो 10 साल से, हमको पता है एक सेवा केंद्र का एक कुमार 10 साल से सेवा केंद्र पर रहता था और एक बार उस पर झूठा आरोप लगा के कहा गया तुमने चोरी की है। उसने कहा मैं सब कुछ अपना छोड़कर यहां आया हूं, मैं क्यों चोरी करूंगा, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे, दिन रात सेवा करने वाला एक ही, इतना बड़ा सेंटर, एक ही कुमार, सब कुछ करने वाला वहां पर, सारा माइक साउंड, शतरंजी गालीचा, प्रोग्राम्स संचालन उस पर, वो कहता है मेरी क्या गलती, मैं क्या करूं, पर बहुत ज्यादा हलचल में आ गया। धैर्य चाहिए यहां पर, स्थिरता चाहिए, सत्य पर विश्वास। तो ये क्या होगा, कितने हुए, 7। उसके बाद यज्ञ की निंदा, संस्था की निंदा, अलग अलग शब्द है, यज्ञ संस्था, दोनों में क्या अंतर है, एक है ब्रह्मा कुमारी संस्था, एक है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय यज्ञ, रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, एक है यज्ञ, एक है संस्था ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में क्या अंतर है, यह संस्था भी है यज्ञ भी है, यज्ञ इंटरनल वर्ड है, ये ऑफिशियल वर्ड है, इसके अलावा ये भी राइट है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, और संस्था, हाँ संस्था का इफेक्ट आता है, और यज्ञ, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कुंड होता है ना, ऐसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है, संस्था में भर्ती किया जाता है। सबसे मुख्य अंतर है, सबसे मुख्य अंतर यज्ञ निराकार है, यज्ञ कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, संस्था स्थान है, बिल्डिंग से संबंधित है, संस्था का संबंध इमारत से है, ये है माउंट अबू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य ये है हेडक्वार्टर, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात जिसकी बाउंड्रीज है, जो दिखता है, जो गोचर है, यज्ञ अगोचर है, यज्ञ निराकार है। यज्ञ अर्थात ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है, उसकी भौगोलिक परिभाषा नहीं है। यज्ञ ये है जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई मतलब ये जो सारा विस्तार फैला हुआ है, भगवान ने आकर जो जो कुछ किया। यज्ञ का संबंध केवल इमारत से नहीं है, यज्ञ अर्थात केवल संस्था नहीं, यज्ञ अर्थात एक एक ब्राह्मणात्मा यज्ञ है, यज्ञ अर्थात किला, यज्ञ की परिभाषा ही कुछ और है, यज्ञ अर्थात यहां की सारी रीति रस्म, यहां की धारणा है, यहां की मर्यादा है, यहां की पवित्रता यज्ञ है। संस्था एक संस्था है, संस्था अर्थात इमारत, बिल्डिंग, नियम, रूल्स, कानून यहां के है, यज्ञ अलग चीज है। इस यज्ञ की ग्लानी करना, इस यज्ञ की निंदा करना है, अर्थात यहां के नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करना। झगड़ा घर में ही चालू है। दादी जानकी ने एक बार एक क्लास में, बहुत पुराना क्लास है, उसमें उदाहरण दिया है कि एक सास है, एक बहू है। सास जो है वो सुबह 4 बज के उठकर बहुत भक्ति करती है, नाम करती है, सब कुछ करती है। उसकी जो बहू है, घर में एकदम भक्तिमय वातावरण है। बहू ज्ञान में आ गई, बहू ज्ञान में आई तो सारे नियम आगे लागू हो गए, अमृत वेला उठे, योग करो। तो बहू जो है अमृत वेला उठती है और झुटके खाती है, और सास जो है वो राम भजन और माला पूरा अलर्ट होके बैठती है। तो बहू सेंटर पर पहुंची, इसको जरा अच्छे से सिखाओ तुम्हारा ज्ञान योग। सास पहुंची सेंटर पर कि ये जो तुम्हारी मेरी जो बहू है जो आपके संस्था में आती है, और ये जो बाबा जो करती है ना, पर सुबह सुबह इसको बहुत नींद आती है, इसका कुछ करो। तो ये क्या है, पति पत्नी दोनों ही युगल ज्ञान में है, सारा मोहल्ला जानता है, और दोनों का झगड़ा जब होता है तो बाहर वाले छुड़ाने आते हैं कि अरे भाई तुम लोग ओम शांति में जाते हो और झगड़ते हो। जो बाहर वाले छुड़ाने आते हैं दोनों को, जो ज्ञान में चलते हैं। लाइन लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर, कोई बीके आता है लाइन तोड़कर अंदर जाता है। हॉस्पिटल लाइन लगी है डॉक्टर के सामने, लाइन तोड़कर सीधा अंदर। वो बैठे हैं वहां पर 1 घंटे से वेटिंग, हम VIP है, सब कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे, इतने बुद्धू नहीं है वो, उनको भी अध्यात्म तो पता है, अध्यात्म पता है। कोई ड्यूटी पर है, उधर से कोई आ गया, सब चले जा रहे हैं उसके पीछे, चाहे कोई भी हो, फिर हो दादी हो या कोई भी हो। यहां ड्यूटी पर हो तुम, कर्तव्य जब पुकारे सब कुछ गौन है, सब मिथ्या है। कर्तव्य के सामने बाबा को आने दो या दादी का क्लास रहने दो, कुछ भी रहने दो, सब छोड़ दो, कोई क्लास, सब फालतू है क्लासेस। जो कर्म जब पुकार रहा है, जो कर्तव्य पुकार रहा है, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसके, वो है करके, ये सब है ज्ञान योग है। यहां आने का लक्ष्य, ये सब तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, अफेयर है, तुम करो ना करो, मुरली 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो या मत पढ़ो, अमृत वेला उठो ना उठो, पर तुमको जो ड्यूटी दी है, जो कर्तव्य है, जो सेवा है, वो सर्वोपरि है। कर्तव्य पुकारता है तो सब कुछ गौन है, सब छोड़ दो। कर्म ही सर्वोपरि है सब कुछ, क्योंकि वो होगा तो बाकी सब होगा, कर्म होगा तो ज्ञान योग होगा। इसके ऊपर आधारित है, बाकी हाँ ये तुम्हारा अपना है, करो ना करो। पर कोई कहे मुझे ज्ञान योग के लिए छुट्टी दो, मुझे मैसेजेस आते हैं कि ना वो भाई जी से बात करो, चंद्रशेखर भाई जी से, मुझे 10 दिन मौन भट्टी के लिए आना है, केवल चुपचाप तपस्या करनी है, आप बात करो एक बार। कोई तो सीधा फोन देते थे, बात करो, फोन लगा के बात करो, क्या बात करो। तो कर्तव्य सर्वोपरि, उसके सामने सब कुछ, चाहे बाबा आ रहे हैं, चाहे क्लास है दादी की, चाहे यज्ञ का कोई फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, सब जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जाने दो सबको, बड़ा दूसरों को आगे जाने दो, हम पीछे ही रहे। द लास्ट शैल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट शैल बी द लास्ट, जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये जो सबसे यहां जो सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे आगे होगा, और यहां जो आगे आगे करता है वो मेरे राज्य में सबसे पीछे होगा। द फर्स्ट विल बी द लास्ट विल बी द फर्स्ट। गरीब साहूकार बनेंगे, साहूकार गरीब बन जाएंगे। तो ये है, कहते यज्ञ की ग्लानी करना, यहां के नियम, यहां की मर्यादाएं, कोई भी चीज, रोड पर ट्रैफिक, हम जा रहे हैं, कार से किसी ने ओवरटेक कर दिया, रुके और उसके साथ झगड़ा चालू कर दिया। झगड़ा करना कोई दूसरे लोग करे तो उसमें कहीं, पर हम हैं कौन? हम निंदा कर रहे हैं उस रीति से उस व्यक्ति की, हम झगड़ रहे, ये हमारे नियम नहीं है। हमें यहां, और जो दो व्यक्ति काम कर रहे, एक बीके एक नॉन बीके, बीके को ज्यादा सफर करना पड़ेगा। काम एक ही है दोनों का, ड्यूटी एक ही है, क्योंकि इसके पास नियम है, इसको सहन करना पड़ेगा। उसको थोड़ी वो क्यों सहन करेगा, वो जाके झगड़ा करेगा। तुमने हमारे बॉस एक है, दो लोग हैं काम कर रहे, वो जाके झगड़ा कर सकता है इसके साथ? ये नहीं कर सकता। क्यों? सहन करने में क्या चीज है, सहनशीलता की क्या क्या महत्व है उसे पता है। इसलिए तो कहते हम यज्ञ की निंदा करना, उसके बाद है मधुबन की निंदा करना, एंटी क्राइस्ट है। हमने देख लिया मधुबन वाले क्या करते मधुबन और मधुबन निवासियों की निंदा करना, यह भी थोड़ा बढ़ रहा है। ब्राह्मण ही ब्राह्मणों की, मधुबन की निंदा करते हैं यहां आकर, यहां देखते हैं ना ये चीज ऐसी चीज वैसी चीज, यहां जाके वहां जाके निंदा करते हैं। यहां वाले भी बाहर वालों की करते हैं, वो भी एंटी क्राइस्ट। वो आएंगे उसके, वो आगे की पॉइंट से। सही बोला। तो कहीं ना कहीं तो हर एक आत्मा कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट है। तो मधुबन की निंदा करना, उसके बाद है दूसरे डिपार्टमेंट की निंदा करना। एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट वालों की निंदा करे, ये है एंटी क्राइस्ट। ये काम ही नहीं करते, ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इनका कुछ हो नहीं सकता है, ये डिपार्टमेंट वाले ही ऐसा है, उसका इंचार्ज ही ऐसा है, तो डिपार्टमेंट वाले भी वैसे ही रहेंगे। तो दूसरे डिपार्टमेंट की महकमे की निंदा करना, ये एंटी क्राइस्ट है। तो इसमें क्या बताया, एक तो यज्ञ बताया, दूसरा मधुबन बताया, डिपार्टमेंट बताया, लास्ट पॉइंट सेंटर सेवा केंद्र की निंदा करना। चाहे मधुबन वाले वहां के सेवा केंद्र की निंदा करें, चाहे स्टूडेंट्स अपने सेवा केंद्र की निंदा करें, या स्टूडेंट्स दूसरे सेवा केंद्र की निंदा करें, एक स्टूडेंट दूसरे सेवा केंद्र की निंदा करे, और वो निंदा करे ना खाली, फैलाए, सब जगह फैलाए, ये समझे कि जैसे ये मेरा अहम कर्तव्य है, मुझे ये बात नहीं जो मुझे पता चली है सबको बतानी है, स्कूप न्यूज, ये जो इंटरेस्टिंग टिडबिट पीस ऑफ न्यूज मिला है, ऐसा लगता है कब बताऊं, ऐसा उतावलापन होता है कि कोई मिल जाए और मैं बताऊं, बताने के बाद थोड़ा ठीक लगता है, कि जैसे अगर मैंने नहीं बताया तो जैसे किसी को पता ही नहीं पड़ेगा, जैसे मुझे भगवान ने ये निमित्त बनाया है इस सेवा के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की ग्लानी करने के लिए। नारद फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, सबसे पहला। तो सब क्या, हाँ फर्स्ट न्यूज, उसमें भी थोड़ी है कि ये इंटरेस्ट होता है कि सबसे पहले ये मैंने न्यूज ब्रेक की, जैसे न्यूज़पेपर वालों को रहता है ना कि हम सबसे पहले ये न्यूज बताएं, ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खबर, वैसे मैं बताऊं कि ये जो भाई था ना ये डिपार्टमेंट से निकालकर उस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, ये जो था ना पहले ऊपर था मधुबन में अभी शांतिवन भेज दिया है, क्यों पता है, मैं बताता हूं, चलो अलग से मीटिंग। ये हुआ, ऐसे ही थोड़ी भेजा, क्यों हुआ मैं बताता हूं, पूरी डिटेल स्टोरी, पार्ट वन, अभी टाइम पूरा हुआ, किसी टाइम कल मिलना पार्ट टू। निंदा, ग्लानी, किसी को धोखा देना, किसी पर आरोप लगाना, सुनी सुनाई बातों को विश्वास कर लेना, मान लेना, पता कुछ नहीं है पर मान लेना यह ऐसा है, ये सब एंटी क्राइस्ट है, 10 प्रकार के। इसमें से मैं कहां हूं? तो एक तो वो थे मीर जाफर, वो जयचंद, जय गोपाल, वो वो सारे एक तरफ थे, वाम भी, और ये एक तरफ है एंटीक्राइस्ट। तो अगर एंटी क्राइस्ट का अंश हम में है तो एंटी क्राइस्ट मुक्त भव। तो क्या हाँ, ये धैर्य से सहन करना, ये एक बहुत बड़ी धारणा है। धैर्यता से सब कुछ सहन करते जाना, यहां ये सब होगा, सब कुछ होगा। धैर्यता चाहिए, साक्षी भाव चाहिए। जैसे भगवान देखो कितनी ग्लानी की लोगों ने उसकी, आके उसने किसी का गला पकड़ा, क्या ए मुझे ये क्यों कहा, मुझे वो क्यों कहा, शांति से बैठा रहा लास्ट तक, ग्लानी चालू थी लास्ट तक रुका, कितना धैर्य है उसमें। तो कोई भी ले लो, जैसे अवतार कंस के अत्याचार चालू है, सारे देवता जाते हैं कि विष्णु के पास आ जाओ, विष्णु आया नहीं है, कंस के अत्याचार चालू ही है। फिर आया, कंस के अत्याचार चालू है, तुरंत कृष्ण ने आते ही नहीं मार दिया, वो बड़ा हुआ तब तक अत्याचार चालू ही है। रावण के लिए तो कितने अत्याचार हो रहे, सब लोग गए कि आओ, राम तो अभी जन्म लिया, फिर बड़ा हुआ, फिर वनवास, और उसके बाद में मारा, मतलब कितना धैर्य। तुरंत आके थोड़ी ना मार दे, जन्म लिया और उधर मार दिया क्या रावण को, ऐसा दिखाया धैर्य, वो धैर्य का सागर है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीविंग एंड पर है हम, उधर गिविंग एंड पर तो कभी रहना ही नहीं है, रिसीविंग एंड पर है, हमारे साथ हो रहा है ये सब। तो धैर्य, सहनशीलता, सरल स्वभाव, साक्षी भाव, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये था एंटी क्राइस्ट। ओम शांति।